हा, ये लीडिंग क्वेश्चन था, आप नहीं बोलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी का जो सेशन है बहुत प्रैक्टिकल है। हम सब बहुत भाग्यवान है कि हमारे बीच में एक ऐसी व्यक्ति है जिनका कल मैं देख रहा था, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम वी कुड नॉट इंट्रोड्यूस हिम इन शॉर्ट। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक ऐसी व्यक्ति जिनकी उम्र 85 इयर्स है और 85 इयर्स की उम्र में ये डेली जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं। ही इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ माइंड ओवर बॉडी। माइंड बॉडी मेडिसिन है ना। इस उम्र में हम लोगों को बेड पे सोते हुए पाते, ज्यादा कहां जाते नहीं। सर इस उम्र में खड़े रह के ऑपरेशन करते हैं, है ना। ही इज ऑल्सो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। और हम सबके भाग्य है कि अभी इनको कुछ दिन पहले दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला है, क्रूसेडर्स अगेंस्ट कैंसर। तो सर का हम बहुत तालियों से स्वागत करेंगे। आप जितने भी कैंसर सर्जन इंडिया में देख रहे हो, जितने भी कैंसर सर्जन, सर टाटा हॉस्पिटल में मोर देन 30 इयर्स ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जितने भी ट्रेन हुए कैंसर सर्जन उनके अंडर ट्रेन हुए हैं, बहुत सारे इनके अनुभव है। मैं अपने को भाग्यवान समझता हूं कि इनके साथ सेवा देने का मुझे मौका मिला। एंड ही हैज समथिंग नोन एज, इन इंग्लिश वी कॉल इट सर्जिकल प्रिसीजन। वो काटते हैं ऐसा, मानो वुंड को इतना अच्छा क्लीन वुंड, परफेक्शन के संस्कार है। तो डॉक्टर अशोक मेहता, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आप में से कितने लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता, इंडिया में सीएमईज कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन चालू करने के इंस्ट्रूमेंट है सर, डॉक्टर अशोक मेहता। ही स्टार्टेड सीएमईज कंसेप्ट इन इंडिया। और सर के मुख से ही हम सुनेंगे, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे अवार्ड, प्रेसिडेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, 3 बार मौत के मुंह से बाहर आए हुए हैं। तो मैं बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका स्वागत करें। हम जोरदार तालियां बजाएंगे, बजाते रहो, बजाते रहो। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, जो सोए हुए वो उठ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम पहले से ही बिहाइंड, थोड़ा सा शेड्यूल है, तो मैं सर को डायरेक्ट पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हम पूछ सकते हैं, लेकिन ही इज 85 ईयर ओल्ड। तो ही पास्ड आउट एमबीबीएस समवेयर इन 1960। इन्होंने इंडिया को फ्रीडम भी देखा है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली है ना, तब का माहौल। मैं इनसे बहुत कुछ हिस्ट्री सुनता हूं। तो मैं इनसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, सर ये सब डॉक्टर सभी के जनरेशन के हैं, मे बी सम ऑफ देम आर सीनियर्स, काफी सीनियर लोग भी यहां पर है, पर मेजॉरिटी मिडल एज और यंग है। क्या बोलू, मिडल एज बोलू या यंग बोलू? यंग है। तो आपके जमाने में है ना, इन 1960 जो मेडिकल था, मेडिकल एजुकेशन, स्टाइल ऑफ वर्किंग, और अभी के जनरेशन में, तो आपको क्या फर्क दिखाई देता है और कौन सा आप एडवाइस देना चाहोगे अभी के डॉक्टर्स को?
अभी जो यहां दिखाई पड़ते डॉक्टर्स, ये तो एक क्लास है।
हाँ,
सबसे उत्साही,
हाँ,
उमंग वाले, खुशी के अंदर। और ये लोग जो आए हैं कि इतनी जब धूप चल रही है,
हाँ,
समर चल रहा है, और आना जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और सारे भारत से आए,
हाँ,
तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट है कि माइंड बॉडी मेडिसिन से हमको क्या फायदा होगा। और खास करके हमारी जो बहनें, उनको लेके आइए, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आदर रखता हूं कि वो डॉक्टर उसको प्यार से यहां ले आए।
तो जोरदार तालियां बहनों के लिए जिन्होंने आपको मोटिवेट करके यहां पर लाया। देखो सर, उन बहनों को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी से है जिन्होंने आपको यहाँ लाया।
और आप में से कई लोग पहली बार आए होंगे तो आपको एक तो जरूर फीलिंग आई होगी कि इतना बड़ा जो संकुल है, इतना बड़ा कैंपस है, ये कैसे बना होगा। तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर जब मैं आया 1988 के अंदर, 89 के अंदर, तो उस समय एक एम्बेसडर गाड़ी थी बस, और छोटा कैंपस था जिसको हम पांडव भवन कहते हैं। सामने एक ओम शांति भवन था और रहने के लिए एक जो मकान था, खास कुछ नहीं था। और उस समय मुझे पहली बार यहां बुलाया गया था, लेकिन जब मैंने वो कैंपस देखा तो उसके अंदर 60 डिपार्टमेंट्स है, छोटा कैंपस था, यहां भी शायद वही डिपार्टमेंट्स है बड़े स्केल पर। और मैंने क्या देखा कि प्रेम उनके पास जो है वो डेडिकेशन, जिसे भाई साहब ने कहा देवता, ये देवता नहीं है, देवता है, देने वाले हैं, तो प्यार इतना दिया। और सबसे ज्यादा ऐसा लगता है हमें जरूर है प्यार की, किसी को भी पूछो प्यार मिले तो आप खुश होंगे और आपको अच्छा लगेगा, द फीलिंग ऑफ गुड द इमोशंस। तो मैंने ये देखा, और मैंने ये देखा कि डेडिकेशन, समर्पितता। और ब्रह्मा कुमारी के बारे में मैंने उनका 5 सिंपल बात उनके अंदर देखी, सबके अंदर, जैसे फोर्ड मोटर गाड़ी से, यदि फोर्ड कंपनी से मोटर गाड़ी निकलती है तो सब में एक सरीख ही होती है, ऐसे मैंने सारे विश्व में जब गया तो मैंने देखा कि उनके अंदर सादाई, सिंप्लिसिटी, दूसरी मधुरता, दे आर वेरी स्वीट, नम्रता, वेरी हम्बल, ह्यूमिलिटी, वो कभी खुद को बड़ा नहीं मानेंगे, ज्ञान में बहुत बड़े होते हैं, सेवा में बहुत बड़े होते हैं, देने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत नम्रता, अंतर्मुखता, बहुत कम बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि दे लॉस्ट सम ऑफ देम, क्योंकि वो परमात्मा चिंतन और परमात्मा याद में रहते हैं। और हर्षित मुक्ता, उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल आपको जरूर देखने मिलेगा। तो मैं समझता हूं ये जो 5 क्वालिटीज देखी तो मुझे लगा कि मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे।
सर सर बहुत इम्पोर्टेंट सोल है ब्रह्मा कुमारी में, क्योंकि यहाँ पे जो परमात्मा का अवतरण, आपको परमात्मा का सेशन होगा, तो जिन दादी के तन में बाप दादा या शिव बाबा का अवतरण होता था उनको ऑपरेट करने के निमित्त बने हैं। दादी गुलजार का इन्होंने ऑपरेशन किया था, तो सर तो बहुत सर्जरी करते थे, लेकिन सर का ऐसी क्या आपने विशेषता देखी, माना आपको दादी को आपने ऑपरेट किया तो आप अपना ऑब्जर्वेशन बताए थे, क्या आपको ऐसा अलग दिखा गुलजार दादी में?
देखिए, जिसके तन में परमात्मा अवतरण होता है 1 in 7 billion, ऐसे आपने कभी सुना है? और जिसके तन के अंदर करीब 69 से 2017 लगभग 48 ईयर्स परमात्मा अवतरण हुआ, वो शरीर कितना अगत्य का होगा। जब दादी जी को कुछ डायग्नोसिस हुआ था ब्रेस्ट कैंसर का, वो दिल्ली में थी उस समय, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम था यहाँ कि हर चीज परमात्मा को पूछते थे, ट्रांस में जाते थे, पूछते थे बाबा को कि क्या करना, बाबा ने कहा बम्बई जाओ, तो वो सब प्रोग्राम उनके थे कहीं और जाने के, कैंसिल करके एक दिन के अंदर वो बम्बई आए। और उस समय उनकी अपॉइंटमेंट हमारे टाटा अस्पताल के जो डायरेक्टर थे उनके साथ में था, लेकिन कुछ कारण से वो बाहर गए होंगे शायद, तो 7 दिन उनको देख नहीं पाए, ऐसा उनके सेक्रेटरी ने बताया। तब जाके उन्होंने उनके साथ जो उनके बहुत अंग संग रहने वाले थे भाई जी, उन्होंने तपास किया कि कहाँ हम ताबड़तोब ट्रीटमेंट कर सके। उसका कारण था कि हमारी मम्मा को जो उनका तस्वीर आप देखते हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और जब डिटेक्ट हुआ तब उनको शायद लीवर में स्प्रेड हो गया था। तो उनको ये अनुभव था कि इसके अंदर एक दिन भी खराब नहीं करना है। तो सर्च के अंदर उनको एक हमारे जो विलेपाले सेंटर की बहन है, उन्होंने कहा मेरे पास एक कार्ड है, क्योंकि उनकी युगल यहाँ सेंटर में एक दिन 3-4 साल के पहले आई थी और ये कार्ड छोड़ के गए, बताया कि आपको कभी भी जरूर पड़े तो ये डॉक्टर साहब यहाँ है। तो वो भाई साहब आए, उन्होंने सब चेक किया अस्पताल में जाके कि योग्य व्यक्ति है क्या है। और फिर मैंने उनको कहा मैं सुबह में 7:30 बजे उनको देखूंगा, तो 7:30 बजे लेके आए। अच्छा, उस समय जो मैं जहां उनको देखने बुलाया था और नानावटी अस्पताल थी वो वेस्टर्न सब में है मुंबई में, और दादी जी का व्यवहार हमेशा साउथ मुंबई में रहता था जहां हमारा मेन रामदेवी सेंटर था, और वहां हमारी यज्ञ की डॉक्टर होती थी जो सबको देखती थी। तो जैसे मैंने कहा यज्ञ उस समय छोटा था, तो कुछ किसी को न कहते हुए उनको रानावटी अस्पताल में ले आए और सुबह में मैंने उनको देखा। अच्छा, इतनी बड़ी व्यक्ति जब आए तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन वुड हैव बीन सो बिग, बट किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं कि कौन है। मैंने तो उनके सफेद वस्त्र देखा तो मैंने सोचा ये कोई सन्यासी है, क्योंकि मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी को मैंने न देखी थी न उनके बारे में कुछ सुना था। लेकिन मुझे सब सन्यासियों के प्रति बहुत आदर था, क्योंकि परमात्मा की याद, परमात्मा को ढूंढने को उन्होंने उनका समस्त जीवन समर्पित किया था। मुझे परमात्मा के बारे में बहुत जानना था, मिलना था, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरा काम धंधा छोड़ूं या मेरा फैमिली छोड़ूं और सन्यासी बनूं। तो उसके वजह से मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो भी सन्यासी है कोई भी संप्रदाय का हो उसके प्रति बहुत आदर रहता था। तो मैंने उसी आदर से उनको देखा, और उनको जब देखा तो हम जो हमारा थोड़ा वेस्टर्न माइंड होता है ना, तो हम समझते हैं हमें ज्ञान है, तो ज्ञान हमें इन्फॉर्मेशन के रूप में पेशेंट को देना है, और खास करके जब पहली बार पेशेंट को देखते हैं और एक शरीर का इम्पोर्टेंट अंग निकालना है तो उनको समझाना पड़ता है। तो मैंने कहा आपको ये जो बीमारी है उसके बारे में कुछ जानना है, आपका ऑपरेशन के बारे में। उन्होंने कहा कुछ मुझे प्रश्न नहीं है। तो मैंने कहा कभी ऑपरेशन करना है? तो कहा आप कल करो तो कल कर दो। ऐसी कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखी कि कुछ न प्रश्न पूछते सीधा कर। तो मुझे लगा कि शायद बहुत अच्छे माता जी है। तो मैंने मेरी सेक्रेटरी को कहा उनको जनरल वार्ड में आप भर्ती कर दीजिए, तो हम कल ऑपरेशन कर देंगे। मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी व्यक्ति थी। मैं ये बताना चाहता हूं कि सिंप्लिसिटी की, ह्यूमिलिटी की कौन सी लिमिट होती है कि इतनी महान व्यक्ति इसके बारे में मुझे न बताते हुए। लेकिन शाम को मुझे फोन आया मेरा रेजिडेंट का कि ये जो दादी जी है उनको डिलक्स वार्ड में भर्ती किया है। तो मैंने सोचा शायद कोई बड़ी व्यक्ति होगी। दूसरे दिन उनका ऑपरेशन हुआ। 10 दिन तक मैं रोज उनको देखने जाता था। सुबह में जाता था, गुड मॉर्निंग करता था, पूछता था नींद आई, दर्द होता है, सिंपल क्वेश्चंस, और प्यार से उनको मिलता था। वो कुछ मुझे फूल देती थी या कुछ तोली जो कहते हैं देती थी, तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे, चले जाते थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि कैसे, और मुझे 10 दिन तक पता भी नहीं चला कि ब्रह्मा कुमारी की इतनी बड़ी व्यक्ति है। तो जब जाने के टाइम पे दादी जी ने कहा आप हमारे पास सेंटर में जरूर आए और हमारे साथ भोजन लीजिए, तो मैंने इमीजिएटली हाँ कर दिया, क्योंकि मैं और मेरी युगल दोनों को सन्यासियों को मिलने में बहुत इंटरेस्ट था। और दूसरे दिन जब हम गए तो हमने सेंटर का वातावरण देखा, एकदम शांत, वाइब्रेशन आप फील करते ना, ऐसा हमारा फीलिंग हुआ। और इस तरह से, और उस दिन हमने उनको ज्यादा सुनाया परमात्मा के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिनकी ह्यूमिलिटी है अनसरपासेबल, इतनी बड़ी व्यक्ति सोचे जब, फिर मैंने जब यहाँ आया इस आश्रम देखा, फिर कुछ कारण से यहाँ अस्पताल बनाने के निमित्त बना, लेकिन जब पहली बार जब बाबा से मिला, परमात्मा अवतरण हुआ उनके तन के अंदर, तो मुझे बुलाया गया था। करीब उस टाइम हॉल के अंदर 2000 लोग बैठ सकते थे, ऊपर का हॉल के अंदर, यहाँ तो 20,000 बैठ सकते हैं। तो मैंने देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस, और अवतरण हुआ और फिर उनकी हस्की वॉइस में पूरा का, और जो भी बोले वो 12 बजे के बाद में तैयार प्रिंटेड दिया। तो ये तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैंने कुछ ज्यादा ज्ञान जाना नहीं था, जैसे आप आए ऐसे मैं आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सुंदर जगह, सुंदर व्यक्तियां, और जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ परमात्मा किस तरह से, परमात्मा अवतरण पहले ब्रह्मा बाबा के तन में होता था और बाद में दादी के तन में होता था, तो इस तरह से हम खींचे और बाबा के साथ जुड़ गए ब्रह्मा कुमार ऑर्गेनाइजेशन से।
और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि सर 3 बार मौत के मुंह से बाहर आए हुए हैं, ठीक है ना? तीनों अनुभव हम सुनने जाए तो बहुत टाइम लगेगा। सर ने शेयर किया कि बचपन में स्मॉल पॉक्स, जो अभी नहीं है, सर को स्मॉल पॉक्स हुआ था एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, और घर वाले ने सोचा था ही जाएंगे। उसके बाद एक मेजर ब्लीडिंग हुआ व्हेन ही वाज इन US, वो एक्सपीरियंस सुनने जैसा है सर्जन्स को और सभी डॉक्टर्स को। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट था, आई वर्क इन एडिक्शन, तो उस समय पेन किलर जाता वो मॉर्फिन इंजेक्शन था, तो इधर मिलता नहीं था, तो सर को अमेरिका से एक बॉक्स दिया गया था, 1 महीना आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन मॉर्फिन। तो मैं सर से चाहूंगा कि एक सर्जन के लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं। फॉरेन गए थे सर, ही इज FRCS दोस डेज, तो अमेरिका में जाके सर को जो कॉम्प्लिकेशंस हुआ सर, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे ब्लीडिंग हुआ। सर को 30 बॉटल ब्लड का चढ़ाया गया था, 30 बॉटल्स ऑफ ब्लड, और फिर उसमें से कैसे सर, उस समय क्या थिंकिंग प्रोसेस सर आपने रखा, इतना कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद में थिंकिंग प्रोसेस ऐसा क्या था जिसके वजह से आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाए और उसमें से रिकवर हुए, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे।
पहले तो वो बफेलो शहर में था, न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर।
कौन से साल की बात है ये?
1970 फरवरी। तो मैं जब वहां रेजिडेंसी करता था हेड एंड नेक सर्जरी की, तो उस समय एक दिन मैं इमरजेंसी कॉल पे था, तो वहां सोया था, तो मुझे पता नहीं था, किसी ने विंडो खुला रखा था और बर्फ पड़ा हुआ था, तो बहुत ठंडी हवा आती थी, तो मेरे को कमर का जब दर्द हुआ तो मैंने कुछ 2 गोलियां दर्द के लिए खाई, और मैं सोचता हूँ कि मुझे उसके वजह से ब्लीडिंग हुआ। उस समय ऐसा सोचता था, यहाँ आने के बाद और ये सब हम सुनते हैं, फिर पता चला कि वो स्ट्रेस रिलेटेड था, क्योंकि ठंडी और एक नया जगह जब काम करने का काफी स्ट्रेस रहता था। तो जब मैं सुबह में उठा तो मुझे खून की उल्टी हुई, तो मैंने पहले तो मेरा अपार्टमेंट को साफ किया, उस टाइम मैं मुछे रखता था, तो मैंने वो निकाल दी क्योंकि मुझे मालूम था राइल्स ट्यूब डालेंगे, और फिर सब साफ करके मैंने अस्पताल में फोन किया कि मैं आता हूँ क्योंकि मेरे को खून की उल्टी हो रही। और उस समय जहाँ मुझे दाखिल किया गया था वो गैस्ट्रिक सर्विस, वो खाली स्टमक का ऑपरेशन करता था और वो कैंसर अस्पताल था, तो उनका तो फिलॉसफी मुझे मालूम था कि उस समय तो कोई एंडोस्कोपी नहीं थी, सीटी स्कैन्स नहीं थे, एंजियोग्राफी नहीं थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, तो उनका तो सीधा बात था, पहले यदि खोलते हैं पेट और देखते हैं कि कुछ कारण है ब्लीडिंग का, और कुछ कारण नहीं मिला तो टारगेट ऑर्गन निकाल देना, मैंने टोटल गैस्ट्रेक्टमी। तो मैंने कहा मुझे तो यहाँ नहीं रहना है, तो मैं बाजू में मेडिकल स्कूल थी, मेडिकल कॉलेज, वहाँ जो सीनियर मोस्ट सर्जन थे उनके पास मुझे शिफ्ट किया गया है। तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया रूफटॉप, यहां से वहां तक का इंसिजन, और कुछ मिला नहीं। स्टमक को खोला तो अल्सर्स थे, एक्यूट इरोजिव गैस्ट्राइटिस जिसके, और ब्लीडिंग बंद हो गया था। तो उनको लगा कि शायद दोबारा हो जाए, तो उन्होंने गैस्ट्रोस्टोमी, मैंने उसके अंदर ट्यूब डाल दिया, गैस्ट्रोस्टोमी किया और छोड़ दिया। लेकिन शायद गैस्ट्रोस्टोमी किया उस समय वो इंटीरियर वॉल फिक्स नहीं किया होगा स्टमक का, तो क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस शायद थोड़ा लीक हो गया होगा और सब डायफ्रेगमेटिक एब्सेस हुआ। और मैं तो 8 दिन के बाद में तो मुझे छुट्टी दे दी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। 15 दिन तक ऐसा लगता था शायद बुखार आता है, फिर शोल्डर में दर्द हुआ तो पता चला कि शायद सब डायफ्रेगमेटिक एब्सेस होगा। और एक दिन मैं काम पे गया था, मैं ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, आने के टाइम पे मैंने थर्मामीटर लिया अपार्टमेंट में आने के टाइम, तो 104 टेम्परेचर था। तो फिर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। फिर उस समय खाली न्यूक्लियर स्कैन्स होते थे, तो पैनक्रियाटिक स्कैन, लंग स्कैन, ये सब लीवर स्कैन सब किया, बट दे कुड नॉट लोकेट द एब्सेस, दे थॉट दैट आई वाज इमेजिनिंग। और फिर वन इवनिंग आई कुड नॉट ब्रीथ, मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने हमारे फिजिशियन को कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने सर्जन को बुलाया और इमरजेंसी थिएटर में लेके गए और मेरे को बेहोश किया। तब जब बेहोश किया और जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं ना ऑपरेशन के पहले, तो जब डालने की कोशिश किया तो लॉट ऑफ पस वॉज पोरिंग आउट फॉर माई इसोफेगस, सो एनेस्थेटिस्ट टोल्ड द सर्जन दैट आई थिंक इज रप्चर्ड एंड ओपन्ड इन टू द स्टमक। सो सर्जन वॉज ओल्ड एंड वॉज एक्सपीरियंस, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द एब्डोमन बिकॉज देर वुड बी लॉट ऑफ एडिशन यू वुंड, सो यू ओपन थ्रू माई चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, एंड यू कुड फील द हीट अंडर द डायफ्राम। उसने उसमें एक छोटा सा छेद बनाया और नली डाल दी एंड ड्रेनेज ट्यूब, और इस तरह से आई केम अराउंड। लेकिन 7 दिन के बाद में मेरी नली लगी हुई थी, मुझे क्रैनबेरी जूस पिलाया गया टू चेक, और उन्होंने कहा मेरे को देखना है कि जूस यहां से तो नहीं आता है। मैंने कहा इससे थोड़ा जूस बाहर आता है यहां से चेस्ट से। लेकिन फिर मैं सो गया, 1 घंटे के बाद में पूरा क्रैनबेरी जूस पूरा बाहर आ गया था बेड के अंदर। तो ये पूरी लंबी कहानी है, गैस्ट्रिक फिस्टुला थ्रू द चेस्ट, सोचो बाइल पोरिंग आउट फ्रॉम योर चेस्ट। और उस जमाना था एंटीबायोटिक्स लिमिटेड थे, इन्वेस्टिगेशंस बहुत कम थे, आई वाज लूजिंग 1 किलो ऑफ वेट एवरी डे बिकॉज ओनली आईवी फ्लूइड चलता था। उस टाइम हाइपर एलिमेंटेशन अभी डिस्क्राइब नहीं हुआ था। तो इस तरह से फिर मैंने उनको कहा मैं आप मेरी खुद की जेजुनल ट्यूब डालता हूं, तो उन्होंने कहा हमने तो ये सुना नहीं है। मैंने कहा हमने बम्बई में डालते थे, तो मैंने खुद की ट्यूब जेजुनल में डाली और इस तरह से मेरा फीडिंग स्टार्ट हुआ। लेकिन जब फीडिंग चालू किया तो 200 ml डायरेक्टली वो लोग डालते थे, तो क्या होता था उससे थोड़ी देर के बाद में मुझे पसीना छूटता था, प्रेशर एकदम ड्रॉप होता था, पल्स रेट बढ़ जाता था और पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। फिर एक दिन एक नर्स आई जो पुरानी नर्स थी, 45 वर्षों, वो अमेरिका में सिस्टम होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते तो वापस काम में जाते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसने क्या किया कॉमन सेंस, उसने कहा मैं 200 ml ऐसा नहीं दूंगी, मैं ड्रिप से दूंगी। तो ऐसे ड्रिप से चालू किया तो फिर मेरे को अच्छा लगा। फिर पता चला कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्यूट डंपिंग सिंड्रोम, आप साथ में जेजुनम के अंदर इतना डालेंगे तो मैंने हर चीज के अंदर कॉम्प्लिकेशन। मेरी आईवी उस टाइम कैनुला डालते थे, तो एक फिलिपिनो रेजिडेंट को भेजा, तो उसने काटा और आधा पौना घंटा वो ढूंढ रहा था कैफेलिक वेन, उसको नहीं मिल रही थी। फिर मैंने मेरी नजर ऐसी की और मैंने कहा अरे भाई तू बहुत आगे है, थोड़ा एक्सटेंड कर इंसिजन, ये डेल्टोपेक्टल ग्रू में तेरे को मिलेगा। तो इस तरह से कई चीजें होती रही और आखिर में जिस दिन मेरे को डिस्चार्ज किया तो मेरी पतलून फिट नहीं होती थी, एकदम लूज हो गई थी, तो पकड़ के चलना पड़ता है सर। लेकिन मैंने मेरी खुद की गाड़ी चलाई क्योंकि वहां तो माइंड ओवर द मैटर ये बात है, और मुझे उस समय मरना नहीं था. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू डाई एट एज 33 व्हेन आई एम सो फुल्ली ट्रेन्ड. आई वॉज फुल्ली ट्रेन्ड इन दिस कंट्री फॉर आई हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 6 years, 5 to 6 years in cancer surgery, and I was about to be appointed on the staff of the hospital. My daughter was at the time 4 years old. So I, you know, had a very, very strong desire not to die. I think this is what kept me going. And after that, my wife had come, and she said, let's go back home. And when I finished my job, I said, no, we'll go around the world. तो बोला मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ में, क्योंकि मेरी सास कहेगी कि उसकी इतनी बड़ी बीमारी और तू उसको घूमने को लेकर गई. तो मैंने कहा तू नहीं आती तो तू मत आना, मैं अकेला जाऊंगा. तो इस तरह से हम दोनों अराउंड द वर्ल्ड जाके जापान, हांगकांग, सिंगापुर, सिलोन सब जाके वापस आए. और ड्यूरिंग दैट फेज आई ड्रोव द कार एवरीवेयर. यू गेट डाउन इन द सिटी, हायर द कार एंड ड्राइव द कार. I think it was a very beautiful experience of mind over the body. Thank you
very much, sir. ये मैं जानबूझ के लिया. अभी इन्होंने हमारे घड़ी की तरफ ध्यान है क्योंकि आपको लंच के लिए छोड़ना है. ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था और ऐसा एक बार नहीं तीन बार हुआ, और उसमें से बाहर आने का यही है कि आई वॉन्ट टू लिव दैट वन थॉट, है ना, कि मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए. सर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये दोनों पति पत्नी है ना, शिरीन बहन इनकी युगल का नाम है डॉक्टर अशोक मेहता, ये मुंबई में मैं देखता हूँ होल डे ये मेडिटेशन में रहते हैं. अभी वर्ली में रहते हैं सीफेस समुन्द्र के किनारे के सामने. तो आप गृहस्थ में रहते हुए राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं. मे भी यहाँ पे बहुत फैमिली वाले लोग बैठे, जो फैमिली वाले हाथ खड़ा करें, जो सब मेजोरिटी ऑफ फैमिली वाले, तो आप इनको ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि हम ऐसे क्या करें कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि लौकिक में रहना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, बच्चे होते हैं, रिश्तेदार होता है, ड्यूटी होती है, वो सब करते हुए क्या हम ये राजयोग कर सकते हैं?
देखिए,
इज इट इजी और डिफिकल्ट?
जब आपका निश्चय पक्का है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है. पहले तो फर्स्ट आई मस्ट बी कन्विंस कि यस इट्स वर्थ डूइंग. इफ यू आर इन सर्च ऑफ गॉड, आपको जीवन में परमात्मा को ढूंढते हैं. कई लोग जाते हैं, जैसे मैं कई यात्रा पे गया था. मैं जैन था तो हमारी यात्राएं होती थी पालीताना, गिरनार, शिखरजी, पावापुरी, क्षत्रियकुंड, ये सब पर्वत पे चढ़ते थे मंदिर में जाने के लिए. मैं ऑल्सो अमरनाथ गया था, 14,000 feet उस टाइम चल के जाना पड़ता था या घोड़े पे जाना पड़ता, तो बहुत अच्छा लगता था. ऐसा लगता था कि परमात्मा को ढूंढने के लिए जो भी तीर्थ स्थान थे उसके अंदर बहुत खुशी आती थी. तो मैं समझता हूं कि यदि आप परमात्मा की शोध में हैं या आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं तो ये सही जगह है. एक दूसरा, सेल्फ, आपको कुछ बदलना है जीवन के अंदर, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बहुत दुख है किसी न किसी कारण का, जैसे फैमिली का दुख है, पैसे का दुख है, या कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका यदि सोल्यूशन, तो सोल्यूशन यहाँ है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन. खुद को, हमें खुद को चेक करना है. बाहर का प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते. हमारी सांस बुरी है, हमारा बॉस खराब है, हमारे दोस्त हमारे विरुद्ध में, उनको हम नहीं बदल सकते. हम खाली हमारा रिस्पॉन्स बदल सकते हैं, और वो रिस्पॉन्स कैसे करना वो यहाँ सिखाया जाता है. तो मैं समझता हूँ ये बहुत अगत्य का है. और जो यहाँ का ज्ञान है ये डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान है. और यहाँ जितनी मुरलियाँ चली है, जैसे दादी जी के द्वारा करीब 1200 मुरली चली, इनको हम अगत्य मुरली कहते हैं, और बाबा की मुरलियाँ 6 साल की छपी हुई है, शायद वो भी 800 से ज्यादा होगी. तो ये जो मुरलियां हैं ज्ञान की मुरलियां हैं, उसके अंदर सब तत्व भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है. इसके अंदर से आप एक मुरली उठा के एक ही मुरली को फॉलो करें तो भी आपका जीवन बदल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इस प्रकार से यदि आपको अच्छा लगा तो उसको फॉलो करो, पहले देखो, क्योंकि हो सकता है कभी सभी तो सरीखे नहीं होते, कहीं थोड़ा आगे पीछे भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन किसी को मत देखो, खाली परमात्मा को देखो। बस एक हमारे सर्व संबंध एक से, हम कहते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मदेव देव, एक के साथ सब संबंध परमात्मा के साथ, तो आपका जीवन बदल जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। समय सीमा को देखते हुए हम यहाँ रुकना चाहेंगे। कैसे लगा आपको एक्सपीरियंस? आप पर्सनली सर से भी मिल सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विच वी कैन शेयर, बट वी आर स्टॉपिंग हियर। अगला सेशन कितने बजे है? हाँ, कितने बजे? तो आप इधर कितने बजे पहुंचेंगे? नहीं, इट्स योर चॉइस, लेकिन 10 मिनट पहले आएंगे तो हम टाइम पे चालू करेंगे तो टाइम पे खत्म करेंगे, ठीक है ना? मुझे पता है चैलेंजेस है भोजन के लिए वहां पे, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बहुत, नहीं तो क्या होता है कि स्पीकर के ऊपर स्ट्रेस आता है और टाइम को हमको कम करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में थैंक यू देंगे, है ना? एक मिनट। यस, हमारे बीच में डॉक्टर रे भट्ट है, डॉक्टर अशोक मेहता का सम्मान करेंगे शॉल के द्वारा। रे भट्ट जिनको आपने कल सुना फ्रॉम लंदन, न्यूरो मेटाबॉलिक, सर खड़े रहेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यस प्लीज स्टैंड। रे भट्ट के भी बहुत सारे अनुभव है, 91 ईयर 85 ईयर्स, है ना? आप देख सकते हैं।
मैं 8 साल का था तब प्राइमरी स्कूल में मैंने अशोक ग्रुप बनाया था। अशोक ग्रुप का काम था सुबह 5 बजे चक्कर लगाना, 5 बजे परमात्मा को याद करना, और अशोक ग्रुप के द्वारा सभी को परमात्मा का संदेश देना। 8 साल का था मैं, और जब मैं इनको मिला आश्चर्य हुआ कि जो मैं बनाना चाहता था, बताना चाहता था, ये साक्षात्कार होकर हमें मिले।
सचिन भाई का भी साथ में सर, आपके।
हेलो, मुझे पहले पता होता तो मैं सब इंटरव्यू लेता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विल मीट 4:30, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पता है किसका है? डॉक्टर सचिन परब, इसलिए टाइम पे आओ। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।